يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، یعنی غیر مسلموں کا رنگ ڈھنگ ہمیں جاہلیت کی طرف مائل کرتا ہے. ہم کہتے ہیں مولوی لگیں گے، ہم اولڈ فیشنڈ لگیں گے، ہم ماسی لگیں گے. کہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک ہی دوسرے کے رفیق ہیں. کیا مطلب؟ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ شیک ہینڈ نہ کرو، ان کو کھانے نہ دو، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ان کے رنگ ڈھنگ نہ اپناؤ، اور ان کو اتنا دین میں آگے نہ کر لو کہ تمہیں اپنا دین برا لگے. اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. یعنی کچھ مسلمان ہیں ان کو مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم اچھے لگتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں، ان کے گن گاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. کہتے ہیں ہم غیر مسلموں کو اس لیے خوش رکھتے ہیں کہ کہیں ہم پہ کوئی مسلمانوں پہ مشکل نہ آ جائے، اور آئی تو وہ ہم تو بچ جائیں گے نا کہ جی ہم تو بڑے لبرل مسلم تھے. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. چلیے یہاں تک تو ایک حصہ پورا ہوا، اب اگلی آیت سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں، سب اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا یہ میرے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ چسپا کرنے والی ہے. جو جہاں جو کام کر رہا ہے چھوڑ دے. آپ کہیں کہ واقعی لبیک اللہ میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بولیے لبیک اللہ تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ میں سننے کو تیار ہوں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. چھوڑنا چاہتے ہو دین؟ چھوڑ دو. اسلام چھوڑنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو. قرآن چھوڑنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو. دین کی ذمہ داری چھوڑنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو. کیوں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ دو ٹوک فیصلے پہ آ گئے اللہ. بڑے لاڈ دیکھ لیے اللہ نے ہمارے، بڑے موقع دیے ہمیں، بڑے پیار سے پکارا، اب چھوڑتے ہو تو چھوڑو. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یقین کریں ہر دفعہ یہ آیت پڑھ کے میں خود کو کہتی ہوں یہ تجھے کہا ہے اللہ نے، کوئی نہ اکڑے میں نہیں کروں گی، میں نہیں کل پڑھاؤں گی. آپ خوش ہوں اگر میں یہ جملہ بول دوں، کل میرے سے اچھا پڑھانے والا آپ کو آئے گا انشاءاللہ. دین کے کام عاجزی کے بغیر نہیں ہوتے. دین کے کام کر کے روئیں ربنا تقبل منا، پھر اور کام کرنے کی مہلت ملتی ہے. اور کندھے تھپکیں اور کندھے اچکائیں، شولڈر ڈاؤن کرنے کے بجائے اور بڑے کر لیں، پاؤں پٹخیں کیا کروں، تو اللہ کہتا جائیے پھر، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے مجبور نہیں ہے، اس کی تو فوجیں ہیں. اس نے ابرہا کے لشکروں کے مقابلے میں پرندے بھیج دیے، ہاتھیوں کو مروا کے رکھ دیا. کیا آج کے کفر کے زور کو اللہ خود نہیں توڑ سکتا؟ واللہ ہی اللہ چاہے تو ایک ایک گھر میں جا کے قرآن کا نسخہ دیا ہے، فرشتے ہی جا کے مسلمان کر دیں لوگوں کو. آپ کو مجھے اللہ نے قرآن کے خادم بنایا ہے. ہم وہ کہنا چاہیے نکار خانوں میں طوطیوں کی آوازیں دے رہے ہیں، خوش ہوں، مبارک دوں اپنے آپ کو، کل بہت لوگ یہ کام کریں گے، پھر آپ کی ویلیو نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنا جائزہ لو، کیوں دین کا کام اچھا نہیں لگتا، کیوں دین اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ اللہ سے محبت نہیں ہے، یا پھر تم سے اللہ کو محبت نہیں ہے. اور ایک اور خوبی جو ان میں ہوگی جو تمہاری جگہ آئیں گے، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، یعنی ان کے آپس کے ساتھیوں کے ساتھ بڑے دل نرم ہوں گے، لیکن غیر مسلم یا غیر اس جو دوسرے باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رولز میں وہ بڑے سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے. اور سب سے بڑھ کے ولا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ ملامت کہاں سے ہوتی ہے آپ کو بتائیں؟ اپنوں سے. مخالفت دشمن کرتا ہے اور اس کے لیے بندہ تیار بھی ہوتا ہے، اپوزیشن، ہاں یہ تو اب ہماری مخالفت کریں گے، لیکن ملامت کیا کہ آپ نہیں آپ کو برا کہنے لگ جائیں، یہ نہیں برداشت ہوتا لوگوں سے. آپ کی دوستیں، آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں، آپ کے گھر والے آپ کو کہیں تمہیں کیا ہو گیا، पागल हो रही हो, हद में रो, सोच के अकल से बात करो, रंग बदल गया, पीली हो गई, मोटी हो गई बैठ के। इस तरह की मोहब्बत भरे जुमले बोलेंगे लोग आपको ताकि आप इस दीन को छोड़ें। बेटियों को माएँ कहेंगी दाढ़ियाँ उतारो, बेटियों के हिजाब उतारेंगी माएँ, क्योंकि फिर पर शादियाँ नहीं होती उनके ख्याल में, कहा मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। छोटी छोटी बात पे दीन बदलते हैं तो फिर छोड़ दो। हाँ, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह वसी ज़राए का मालिक, और वो सब कुछ जानता है। दुआ करें ये सिफात मेरे में आ जाएं ताकि मेरी जगह अल्लाह किसी और को ना बुलाए, मरते दम तक, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह मुझसे ये काम ले ले, और आजजी भी दे, अकड़ ना दे, तकब्बुर ना दे, बड़ाई ना दे, हम में जो जो काम कर रहा है उसकी नियत करके ये दुआ कर ले। फिर मैं तुम्हारे रफ़ीक तो हकीकत में सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज़ कायम करते हैं। अब देखिए पिछली आयत से रब जोड़े, इंसान के दोस्त साथी उसको छोड़ने लगते हैं ना दीन पे आते ही, तो दिल टूटता है। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें क्या वो दोस्त चाहिए जो तुम्हें फ़िल्मों की बातें सुनाते थे, जो गाने शेयर करते थे? देखो तुम्हें अल्लाह, उसका रसूल और ईमान वाले दोस्त नहीं मिल गए इस जगह आकर, जो नमाज़ की दावत देते हैं और ज़कात का अदा करते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक बना ले। इसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। कितनी एनर्जी है इस एक जुमले में। जब हम दीन पे आते हैं ना, हम टूटने लगते हैं, हमारी दोस्तें हमें फिर महफिलों में बुलाती नहीं है, फिर हम कहते हैं हाय आइसोलेशन, मुझे तो बहुत बैड फील हो रहा है, अब तो कोई मुझे दावत नहीं देता, चुपके चुपके काम करते हैं। कहा छोड़ो, तुम्हें या तुम्हारी चॉइस चेंज हुई, अल्लाह ने तुम्हारी पार्टी चेंज की, वो भी सब आ जाएंगे, ज़रा तुम तो जमे रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर पुकार है, कहें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जवाब में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पेश रहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरीक का सामान बना लिया। मजाक बनाया हुआ ना आज दीन का हमने कई जगहों पे, अल्लाह हमें हिदायत दे। इन्हें और दूसरे काफिरों को अपना दोस्त रफीक ना बनाओ, अल्लाह से डरो अगर मोमिन हो। जब तुम नमाज के लिए मुनादी करते हो तो ये इसका मजाक उड़ाते हैं और इससे खेलते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अक्ल नहीं रखते। इनसे को अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हुए, वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन की इस तालीम पर ईमान ले आए जो हमारी तरफ नाजिल हुई और हमसे पहले भी नाजिल हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। फिर कहो क्या मैं इन लोगों की निशानदेही करूँ जिनका इंजाम अल्लाह के यहाँ फासिकों के इंजाम से भी बदतर है? मल्लानहुल्लाहु वगदिब अलैहि, जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर इसका गज़ब टूटा, जिनमें बंदर और सुअर बनाए गए। देखिए ये आयत बता रही है कि बनी इसराइल में बंदर तो बनाए गए थे ना, सुअर भी बनाए गए थे, और हदीस में आता है एक वक्त आएगा मेरी उम्मत में भी ये काम होगा, जब लोग गाने बजाने का काम करेंगे और इस तरह से बेहयाई आम होगी तो लोगों की शक्लें बदल दी जाएंगी, कुत्तों की शक्लों में वो लोग लाए जाएंगे जो गीबतें और करते और चुगलखोरियाँ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। जिन्होंने तागूत की बंदगी की, इनका दर्जा और भी ज़्यादा बुरा है, और वो सवा उस सबील से बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। अब देखिए कई लोग दो रंगी चाल रखते, सबको खुश रखना चाहते हैं, हालांकि कुफर लिए हुए आए थे और कुफर लिए हुए वापस चले गए। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। तुम देखते हो इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते हैं। सच है कि नहीं? आम तौर पे लोगों की दौड़ धूप किस काम पे होती है? उसका जिक्र है। और हराम का माल खाते हैं, बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर ज़ुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते। इसको हाईलाइट करें, मजहबी तबके पे इससे बड़ी तनकीद और कोई नहीं होगी कि लोग हराम खा रहे हैं, लोग गुनाह की ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं चुप, फिर हमारे चंदे बंद हो जाएंगे, लोग कम आएंगे, फिर नजराने नहीं आएंगे, फिर गरम गरम खाने पक्के नहीं आएंगे, नहीं इनको खुश करो। हाँ मजबूरी है, यकीन करें मैं हैरान होती हूँ लोगों की बातों पे कि लोग कहते हैं कि दर्स देने वाले, गीबत से रोकने वाले उठ के बाद में 10-10 गीबतें करते हैं, पाँव में से ज़मीन निकल जाती है ऐसी बातें सुन के कि मुझे तो नहीं ये कोई कह रहा। अब मुझे बताएं जो लोग आपकी ज़ुबान से सुनकर गीबत छोड़ें, जब आप गीबतें करेंगे तो क्या फिर वो आपके बारे में ऐसे नहीं करेंगे? अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, क्योंकि इनके उलमा और मशाइख ने गुनाह पर ज़ुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते। यकीनन बड़ा ही बुरा कारनामा ज़िंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला में अमल वाला बना दे। और यहूद की जुरत देखिए, लोगों में तो बातें करते ही थे, अल्लाह को क्या कहने लगे जब वो आयत नाजिल हुई ना, मंजल्ला जी युकरीदुल्लाहु कर्जन हसना, उसके जवाब में यहूद में से कुछ ने क्या कहा, बड़ा ही गंदा जुमला है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में उनका बयान कर दिया। यहूद कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, नाउज़ुबिल्लाह, बांधे गए इनके हाथ और लानत पड़ी इन पर इस बुरी बात की वजह से जो ये बोलते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, हो रहा है नाजिल आप पे भी, वो इनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मूजब बन गया। ये क्या, कुरान दिलों में आए और पातिल हो जाए इंसान कब, जब कुरान सुनते हुए संजीदा ना हो। और इसकी पादाश में हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह इसको ठंडा कर देता है। ये ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह फसाद फैलाने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। इस सरकशी की बजाय अहले किताब ईमान ले आते और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर करते और इनको नेमतों भरी जन्नत में पहुंचाते। काश उन्होंने तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से इनके पास भेजी गई थी। अब ज़रा यहाँ लिखिए, पाकिस्तान के मसाइल का हल, लोड शेडिंग का हल, कहत का हल, महंगाई का हल क्या है? किताब को नाफिज करो। क्या होता, ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और इनके पाँव से भी रिस्क उबलता। अगरचे इनमें से कुछ लोग राह रास पर भी हैं, लेकिन अक्सरियत बदअमल है। आपको तो सऊदी अरब में तेल कब निकला था, यानी आज सऊदी अरब बहुत अमीर मुल्क है ना, ये पहले बहुत गरीब मुल्क था। एक ऐसे किंग आए थे जिन्होंने कहा था इस्लामी शरीयत नाफिज होगी। जूँ ही उन्होंने इस्लामी सज़ाएँ और इस्लामी कानून नाफिज किए, सऊदी अरब में ऐसा तेल निकला, आप देखिए अमेरिका ने उसको कैसे रोका हुआ है। आपका नॉर्वे इस वक्त कितना परेशान है सऊदी अरब के तेल से, आप सबको अंदाज़ा तो थोड़ा हो गई ना। तो ये अल्लाह देता है, आज पाकिस्तान के ज़मीन के सोने चांदी बाहर आ जाएंगे जिस दिन आपके वहाँ इस्लाम नाफिज हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ये वक्त तो लाए, कितना खूबसूरत वो दिन होगा। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो लोगों तक पहुँचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा ना किया। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज ना दिखाएगा। साफ कह दो कि अहले किताब तुम हरगिज किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम ना करो। ये है अल्लाह का फैसला। बरकत रहमत आती किताबों को नाफिज करने से है, चुमने से नहीं। कौन सी किताबें जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई हैं? ज़रूर यह है कि यह फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया इनमें अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस ना करो क्योंकि उज्जत तमाम हो गई है। यकीन जानो कि यहाँ इजारा किसी का भी नहीं है, मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान लाएगा नेक अमल करेगा, बेशक इसके लिए किसी खौफ का ना मुकाम है न रंज। सब को अमल की दावत है। और आप पारे की आखिरी आयतों का एक मफहूम शुरू हो रहा है। क्या हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी इनके पास कोई रसूल इनकी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ कुछ लेकर आया। इसको हाईलाइट करें, ये ख्वाहिशात नफ्स नहीं हमें इस्लाम को नाफिज होने दे रही, क्योंकि ये फिर हमारी ख्वाहिशों वाली ज़िंदगी नहीं रहेगी। उनके साथ क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो उन्होंने किसी को झुठलाया और किसी को कत्ल कर दिया और अपने नज़दीक ये समझे कि कोई फितना रूनमाना होगा, यानी नबियों को कत्ल करके भी कह रहे हैं हमारी पकड़ नहीं होगी, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने इनको माफ़ किया तो इनमें से अक्सर लोग और ज़्यादा अंधे बहरे बनते गए। देखिए बाज़ लोग अल्लाह की मोहलत को, अल्लाह की ढील को, अल्लाह की नरमी समझते हैं। फरमाया अल्लाह इनकी ये सब हरकत देखता रहा। यकीनन कुफ्र के इन लोगों ने जिन्होंने कहा अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है, हालांकि मसीह ने कहा था ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो। ये आयतें आपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स से शेयर करनी है। क्या, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी और तुम्हारा रब भी, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया इस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया और इसका ठिकाना दोजख है और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफर किए इन लोगों ने जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में का एक है, ट्रिनिटी, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई नहीं। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिस जिसने कुफर किया इसको दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और इससे माफ़ी ना मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी आज के दौर की जितनी बातिल चीज़ें हैं उनका जवाब आपको इन आयतों में मिल रहा है। हज़रत ईसा खुदा नहीं थे बल्कि क्या थे? मसीह ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं थे, बस एक अल्लाह के रसूल। इससे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे। इनकी माँ एक सच्ची औरत थी, वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह इनके सामने हकीकत की निशानियां वाज़े करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फेरे जाते हैं। आज नबी सल्लम के मामले में भी बास लोगों का यही गुमान है। तो आप देखिए, आप भी खाते थे पीते थे, आपकी शादियां हुई, तो नबी इंसान होते थे। इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी पर उसकी परस्तिश करते हो, जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखे ना नफ़े का, हालांकि सबकी सुनने वाला और सब जानने वाला अल्लाह ही है। कहो ऐ अहले किताब, अपने दीन में ना हक गलूब ना करो। पीछे बात आई थी गलूब की, यहाँ भी आ गई, आगे फिर आएगी। और इन लोगों के तख़य्युलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह से भटक गए। आज हम जैसे नॉन मुस्लिम्स को देख के भटकते हैं ना, तो ये जो क्रिश्चियंस हैं ना, ये पेगन्स को देख कर, यानी ग्रीक्स यूनानी लोगों को देख कर भटके थे। ये ट्रिनिटी का तसव्वुर ग्रीक मैथोलॉजी से आया था। शिर्क की बहुत लंबी चौड़ी उनकी बातें थी, जिससे ये इतने इम्प्रेस हुए इन्होंने भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। तो हर वक्त के मुसलमान पिछली नॉन मुस्लिम कौमों को देख कर भटकते हैं, उसी का जिक्र इन आयात में। और इसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, जब कभी ये आयतें हम डिटेल से पढ़ें, कि ये किस तरह सब हुआ। आज हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम किन के पीछे लगे हुए हैं। फरमायलुइनल्लज़ीना कफरू, बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह अख्तियार की, इन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की ज़ुबान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज़्यादतियाँ करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफ़ाल के करने से रोकना छोड़ दिया था। इसको हाईलाइट करें, जब कोई कौम बुरे कामों को करता देखे और ना छोड़े, तो अल्लाह की लानत उस पर आ गई। बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। आज तुम इनमें से बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफार की हिमायत और रिफाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी इनके नफ्सों ने इनके लिए की। अल्लाह इन पर गज़बनाक हो गया और वह हमेशा के अजाब में मुबतला होने वाले हैं। अगर वाकई ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज़ के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना दोस्त न बनाते। कितनी वाज़े बातें, पूरे पारे का एक ही थीम है कि अल्लाह की नाजिल करता किताब को मानने वाले उस किताब को नाफिज करें, दूसरों की तरफ ना देखें। मगर इनमें से अक्सर लोग अल्लाह की इताअत से निकल चुके हैं। और आप देखिए, अदल और इंसाफ से भरी भी आयतें हैं। अल्लाह ने तकाबुल में तीनों गिरोहों का मुसलमानों के सामने रखा। तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूद को पाओगे। और इसकी दलील देखिए कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में चंद लोगों के सिवा कोई यहूदी मुसलमान नहीं हुआ। और मुशरिकीन को पाओगे, मुशरिकों में भी बहुत थोड़े थे। और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तरीन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। क्रिश्चियंस मुसलमानों के लिए निस्बतन नरम गोशा रखते हैं। आज अब देखिए, जितने रीवर्ड्स होते हैं 90% उनमें से क्रिश्चियंस होते हैं। ये इस आयत की सच्चाई की दलील है। वजह ये इस वजह से कि इनमें आप इबादत गुजार आलिम और तारिक दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं, और इनमें गरूर नफ्स नहीं। यानी जब ये नफ्स के गरूर में नहीं है तो ये बात को मान लेते हैं। तो सारी बात का खुलासा ये निकला कि जब दिल में बड़ाई का एहसास नहीं होगा, तो अल्लाह ताला की बात सुनकर मानना आसान होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस पूरे पारे में हमने जो कुछ सुना है उसको हमारे दिलों में जब्त कर दे अमल के लिए। आप देखिए, वादों को पूरा करना, शायरिल्लाह की हुरमत से बचना, नेकियों पे तावन करना, हराम खाने से रुकना, किस्मतों का हाल मालूम करने से रुकना, पूरे दीन पे अमल करना, तयजीबात खाना, वुजू का तरीका, अदल की बात, फिर इसी तरह से नमाज़ों को कायम करना, फिर इसी तरह से किताबों को नाफिज करना, हसद से बचना, चोरी चकारी से बचना, एक बारे में हम क्या कुछ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.